नंबर फोर, द्वितीयक जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत, सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी पॉपुलेशन डाटाज। जनसंख्या संबंधित द्वितीयक आंकड़े प्रकाशित तथा अप्रकाशित दोनों प्रकार के स्रोतों से प्राप्त किए जा सकते हैं। अप्रकाशित आंकड़े सामान्यतः शोध प्रबंधों, शोधकर्ताओं, प्रोजेक्ट रिपोर्टों, कार्यालय अभिलेखों, व्यापार संघों के अभिलेखों आदि से प्राप्त किए जाते हैं। इन आंकड़ों से कई प्रकार की व्यक्तिगत जांच की जाती है, किंतु इन जांच परिणामों को सामान्यतः प्रकाशित नहीं किया जा सकता। अतः इस प्रकार के आंकड़े प्रायः संस्था के सदस्यों द्वारा ही प्रयोग किए जाते हैं। जनसंख्या भूगोलवेत्ता के बिल के लिए अप्रकाशित आंकड़ों का महत्व कम होता है और वे अधिकांशतः प्रकाशित आंकड़ों का ही प्रयोग करते हैं, किंतु कभी कभी प्रकाशित आंकड़ों के अभाव में अथवा उनकी जांच के लिए अप्रकाशित आंकड़ों का भी प्रयोग किया जा सकता है। प्रकाशित जनसंख्या आंकड़ों को एक, नंबर पहला, केंद्रीय राज्य और स्थानीय सरकारों के प्रकाशनों, सरकारी प्रकाशनों, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों, तीसरा निजी तथा व्यापारिक संगठनों के प्रकाशनों, चौथा शोध प्रतिवेदनों, रिपोर्टों आदि विविध स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। जनसंख्या भूगोलवेत्ता जनसंख्या के विविध लक्षणों से संबंधित आंकड़े जिन स्रोतों से प्राप्त करता है उनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं, ए जनसंख्या रिपोर्ट सेंसस रिपोर्ट्स, बी पंजीयन अभिलेख रीजनल रिकॉर्ड्स, सी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण नेशनल सैंपल सर्वे एंड डी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन इंटरनेशनल पब्लिकेशन। ए जनसंख्या जनगणना रिपोर्ट सेंसस रिपोर्ट्स किसी नियत समय पर किसी देश या प्रदेश की समस्त जनसंख्या की गिनती को जनगणना कहते हैं। क्लार्क के शब्दों में किसी समय विशेष पर किसी निश्चित क्षेत्र में बसे हुए समस्त व्यक्तियों में से संबंधित जननांकीय आंकड़ों के संग्रह, संकलन तथा प्रकाशन संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया को जनगणना कहते हैं। A census has been defined as the total process of collecting, compiling, and publishing demographic data pertaining a particular time to all persons in a defined territory. संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा के अनुसार किसी देश अथवा देश के पूर्णतः सीमांकित किसी विशिष्ट समय पर सभी व्यक्तियों से संबंधित जननांकी, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एकत्रित करने, संकलित करने, मूल्यांकन करने, विश्लेषण करने और प्रकाशित करने की समस्त प्रक्रिया को जनगणना कहते हैं। A census of population in the total process of collecting, compiling, evaluating, analyzing and publishing demographic, economic and social data pertaining at a special time to all persons in a country or in a well-defined part of a country. प्राचीन काल में भी यूनान, मिस्र, रोम, बेबीलोन, चीन, भारत आदि सभ्य देशों में कर को एकत्रित करने अथवा सेना में भर्ती के लिए जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का संग्रह एवं संकलन किया जाता था। तत्कालीन जनगणना का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना होता था कि देश में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनसे कर लिया जा सकता है, अथवा ऐसे कितने युवक हैं जिन्हें सेना में सम्मिलित किया जा सकता था। इसी कारण से इसमें बच्चों और स्त्रियों को सम्मिलित नहीं किया जाता था। आधुनिक प्रकार की जनगणना का आरंभ 17वीं शताब्दी से माना जाता है। 17वीं शताब्दी में इटली के छोटे छोटे राज्यों ने जनगणना कराई थी, किंतु राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना प्रथम जनगणना 18वीं शताब्दी में स्वीडन 1749 ईस्वी में द्वारा कराई गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में नियमित जनगणना का आरंभ 1790 ईस्वी से हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस में नियमित जनगणना सन 1801 ईस्वी से आरंभ हुई। इन जनगणनाओं में वर्तमान समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जनगणना अनुसूची तथा प्रश्नावली का निर्माण किया जाने लगा, जिनसे जनसंख्या के विविध आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक लक्षणों को सम्मिलित किया गया। सन 1860 ईस्वी तक विश्व के छोटे बड़े लगभग 25 देशों में नियमित जनगणना आरंभ हो गई थी। भारत और चीन जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश उसमें समाहित नहीं थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से विश्व के अधिकांश देशों में नियमित जनगणनाएं होने लगी थी। भारत में प्रथम जनगणना सन 1872 ईस्वी में संपन्न हुई थी। भारत में जनगणना कराने की स्वीकृति तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने 1865 ईस्वी में प्रदान की थी। इसके लिए नमूना जनगणना अनुसूची तथा प्रश्नावली बनाई गई थी, जिसके आधार पर सन 1865 ईस्वी से 1872 के मध्य जनगणना की गई थी, किंतु देश के अनेक दुर्गम भाग इसमें सम्मिलित नहीं थे। इसमें न तो कोई एक निर्धारित समय बिंदु था और न ही इसमें संपूर्ण देश को समाहित किया गया था। सन 1881 ईस्वी में एक समान आधार पर समस्त देश के लिए एक नियत समय बिंदु पर जनगणना संपन्न हुई थी। यही कारण है कि सन 1881 ईस्वी जनगणना को प्रथम पूर्ण जनगणना माना जाता है। अतः जनसंख्या के तुलनात्मक अध्ययन हेतु इसे आधार माना जा सकता है। इसके पश्चात प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित रूप से जनगणना होती है। भारत की अंतिम जनगणना 2001 में हुई है। इस प्रकार भारत में अब तक कुल 13 जनगणनाएं हो चुकी हैं। भारतीय जनगणना में विविध प्रकार के जनसंख्या लक्षणों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, जिनमें कुल जनसंख्या, आयु, लिंग, ग्रामीण और नगरी, प्रमुख व्यवसाय, साक्षरता, प्रवास, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति, धर्म आदि के अनुसार जनगणना संबंधी आंकड़े प्रमुख हैं। जनगणना की विशेषताएं। आधुनिक जनगणना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट, जनगणना एक राष्ट्रीय माल मूल्यांकन नेशनल स्टॉक टेकिंग है, जिसमें देश के सभी व्यक्तियों की गणना के साथ ही विविध प्रकार के जनांकी, आर्थिक एवं सामाजिक लक्षणों के संबंध में विस्तृत सूचनाओं का संग्रह किया जाता है। सेकेंड, जनगणना राष्ट्रीय सरकारों द्वारा कराई जाती है, क्योंकि इसके लिए व्यापक संगठन और आर्थिक साधनों की आवश्यकता होती है, जिसे प्रायः केंद्रीय सरकारें ही वहन करने में समर्थ होती हैं। राज्य सरकारें सहायक रूप में कार्य करती हैं। थर्ड, जनगणना एक निर्धारित समय अंतराल पर नियमित रूप से होती है। अधिकांश देशों में 10 वर्ष के समय अंतराल पर जनगणना संपन्न होती है। फोर्थ, जनगणना स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र तक ही सीमित होती है। फिफ्थ, संपूर्ण देश में जनगणना एक निश्चित समय बिंदु पर एक साथ कराई जाती है। इसके अभाव में आंकड़े पूर्ण तुलनीय नहीं होते हैं। सिक्स, जनगणना के आंकड़ों को एकत्रित कर लेने के पश्चात उनका संपादन, विश्लेषण और प्रकाशन किया जाता है। जनगणना की सीमाएं एवं समस्याएं। विविध प्रकार के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कारणों से विश्व के सभी देशों में जनगणना का संचालन समान रूप से नहीं हो पाता है। विभिन्न देशों में जनगणना संबंधी अपनी सीमाएं हैं, जिनके कारण जनगणना दोषपूर्ण रह जाती है। जनगणना की प्रमुख समस्याएं निम्नांकित हैं। फर्स्ट, विकसित देशों के पास सफल जनगणना के लिए पर्याप्त कोष, उच्च तकनीक तथा अन्य साधन हैं। इनके प्रयोग से जनसंख्या संबंधी सभी वांछित सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, जिनकी विश्वसनीयता और शुद्धता उच्च होती है। इसके विपरीत विकासशील देशों में अर्थ एवं साधनों की कमी तथा कर्मचारियों के उचित प्रशिक्षण के अभाव में जनगणना प्रायः दोषमुक्त नहीं हो पाती है। इससे विश्व के सभी देशों की तुलना कठिन हो जाती है। सेकेंड, विश्व के सभी देशों में जनगणना का समय और अंतराल एक समान न होने के कारण आंकड़े पूर्ण तुलनीय नहीं रह जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के अनुसार विश्व के सभी देशों को जनगणना शून्य से समाप्त होने वाले वर्ष जैसे 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 अथवा उसके सन्निकट कराई जानी चाहिए, जिससे आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय हो सके। अधिकांश देश इसके अनुकूल जनगणना कराते हैं। जापान, कोरिया आदि कुछ देशों में 5 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की परंपरा है। थर्ड, निवास स्थान अथवा उपस्थिति के आधार पर जनगणना दो प्रकार की होती है। फर्स्ट, वास्तविक जनगणना डिफेक्टो सेंसस एंड विधिक जनगणना डी जीरो सेंसस। प्रथम प्रकार की जनगणना के अंतर्गत एक निश्चित दिन अथवा रात्रि को संपूर्ण देश में जनगणना एक साथ होती है और जो मनुष्य जहां उपस्थित होता है उसकी गणना वहीं कर ली जाती है, भले ही उसका निवास अन्यत्र हो। इसके विपरीत विधिक जनगणना में व्यक्ति की गणना उसके निवास स्थल पर की जाती है, भले ही गणना के समय वह अपने निवास स्थल पर उपस्थित न हो। ज्ञातव्य है कि विश्व के कुछ देशों में वास्तविक जनगणना की जाती है तो कुछ देशों में विधिक या कानूनी जनगणना। अनेक ऐसे भी देश हैं जहां दोनों प्रकार की गणना की व्यवस्था है। इस प्रकार विश्व के समस्त देश में जनगणना की समानता के अभाव में आंकड़ों की पूर्ण तुलनीयता कायम नहीं रह जाती है। फोर्थ, विश्व के कई ऐसे देश भी हैं जहां जनगणना का प्रचलन आज भी नहीं है। वियतनाम, लाओस, भूटान, अफगानिस्तान, इथोपिया, यमन आदि इसी प्रकार के देश हैं। नियमित जनगणना के अभाव में विश्व स्तरीय सही आंकड़ों की प्राप्ति में कठिनाई होती है। फिफ्थ, जिन देशों में नियमित जनगणनाएं संपन्न होती हैं उन सभी में समान प्रकार की सूचनाएं एकत्रित नहीं की जाती हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय तुलनीयता कम हो जाती है। अब अधिकांश देश संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित मानक का प्रयोग करने लगे हैं, जिससे जनगणना संबंधी आंकड़ों अधिक तुलनीय हो जाते हैं। 6. अविकसित एवं विकासशील देशों में ही नहीं बल्कि कई विकसित देशों में भी लोग व्यक्तिगत तथा पारिवारिक सूचनाओं को छिपा लेते हैं और गणनाकारों के सम्मुख प्रकट नहीं करते हैं। इससे सही तथ्य सामने नहीं आ पाते हैं। बी पंजीयन अभिलेख रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स। जनसंख्या भूगोल का विद्यार्थी जनगणना के अतिरिक्त पंजीयन संस्थाओं से भी द्वितीयक आंकड़े प्राप्त करता है। चीन, जापान, कोरिया आदि पूर्वी एशियाई देशों में प्राचीन काल में भी पंजीयन की प्रथा थी। मध्यकाल में कुछ यूरोपीय देशों जैसे फ्रांस और स्वीडन में जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण किया जाता था, किंतु उसका क्षेत्र लघु तथा पंजीयन अनियमित होता था। इस प्रकार प्राचीन और मध्यकाल में भी विश्व के अनेक देशों में मृत्यु, विवाह, धर्म परिवर्तन आदि के संबंध में कुछ सूचनाएं अंकित की जाती थीं, किंतु जन्मों, मृत्युओं और विवाहों के व्यापक नागरिक पंजीकरण की परंपरा का आरंभ 19वीं और 20वीं शताब्दी में ही आरंभ हो पाया। आधुनिक पंजीयन का आरंभ इंग्लैंड और वेल्स में सन 1836 ईस्वी में आरंभ हुआ। स्कॉटलैंड में पंजीयन सन 1854 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड और वेल्स में सन 1874 में जन्मों का पंजीकरण कराना अनिवार्य करा दिया गया। पंजीयन के अंतर्गत विभिन्न जन्मांकीय घटनाओं जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह, तलाक आदि को परिवार के सदस्यों द्वारा पंजीयन संस्था में अंकित कराया जाता है। पंजीयन का कोई निश्चित समय नहीं होता है, बल्कि घटना के घटित होने के पश्चात इसे पंजीयन कार्यालय में दर्ज करा दिया जाता है। इसका जननांकीय और कानूनी दृष्टि से बहुत महत्व होता है। भारत में पंजीयन रजिस्टर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय मालगुजारी, कार्यवाहक या सचिव के पास और नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका के कार्यालय में होता है। जनसंख्या भूगोलवेत्ता को जन्म और मृत्यु संबंधी आंकड़े इन पंजीयन संस्थाओं के अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। पंजीयन अभिलेख मुख्यतः दो स्रोतों से प्राप्त किए जा सकते हैं, जन्म मृत्यु पंजीयन वाइटल रजिस्ट्रेशन, सेकेंड जनसंख्या रजिस्टर पॉपुलेशन रजिस्टर से। फर्स्ट जन्म मृत्यु पंजीयन वाइटल रजिस्ट्रेशन। इसके अंतर्गत जन्म, मृत्यु, विवाह, तलाक, गोद लेना, प्रवास आदि जननांकीय घटनाओं को पंजीयन कार्यालय में अंकित कराना होता है। इस कार्य का उत्तरदायित्व प्रायः परिवार के मुखिया या सदस्य का होता है। विश्व के अधिकांश सभ्य देशों में जन्म और मृत्यु के पंजीयन को अनिवार्य कर दिया गया है। जननांकीय घटनाओं के समय दी जाने वाली सूचनाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का सुझाव इस प्रकार है। ए जन्म संबंधी पंजीयन के लिए जन्म का स्थान, समय, शिशु का लिंग, माता की आयु, जन्म का क्रम आदि सूचनाएं। बी मृत्यु संबंधी पंजीयन के लिए मृतक का नाम व निवास स्थान, मृत्यु का स्थान, मृतक की आयु तथा लिंग, मृत्यु का कारण आदि से संबंधित सूचनाएं। सी विवाह पंजीकरण के लिए विवाह की तिथि, पति और पत्नी की आयु, जन्म स्थान, व्यवसाय आदि संबंधी सूचनाएं। दूसरा जनसंख्या रजिस्टर, पॉपुलेशन रजिस्टर्स। कुछ देशों में जनसंख्या रजिस्टर रखने की परंपरा है जिसमें प्रत्येक देशवासी का नाम अंकित होता है। इसमें प्रवासी लोगों का भी अभिलेख रहता है। इस रजिस्टर से देश की वर्तमान जनसंख्या, प्रवास तथा जीवन संबंधी अन्य आंकड़े भी प्राप्त होते हैं। भारत में सर्वप्रथम जन्म मृत्यु के पंजीयन का शुभारंभ सन 1844 ईस्वी में मद्रास में हुआ, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति तक जीवन संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का कोई संगठन नहीं था। देश में प्रथम बार सन 1949 ईस्वी में महापंजीयक रजिस्टर जनरल के पद पर नियुक्ति की गई। सन 1968 ईस्वी में पंजीयन संबंधी एक अधिनियम बनाया गया। इसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जन्म, मृत्यु और विवाह के पंजीयन को अनिवार्य बनाया गया, जिसमें पंजीयन न कराए जाने पर दंड की भी व्यवस्था है। सी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, नेशनल सैंपल सर्वे। जनगणना सामान्यतः एक नियत समय अंतराल प्रायः 10 वर्ष पर होती है। अतः जनगणना के मध्यवर्ती वर्षों के लिए सूचनाएं एकत्रित करने के उद्देश्य से नमूना सर्वेक्षण कराते हैं। भारत सहित बहुत से देशों में राष्ट्रीय सर्वेक्षण, नेशनल सैंपल सर्वे नामक संस्थाएं स्थापित की गई हैं, जो प्रतिमा, छमाही अथवा वार्षिक रूप से जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का संग्रह करती हैं और उन्हें प्रकाशित भी करती हैं। जनसंख्या भूगोल के शोधकर्ता को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से उपयोगी आंकड़े प्राप्त होते हैं। समय समय पर सरकारी तथा अर्ध सरकारी संस्थाएं नमूना सर्वेक्षण द्वारा आवश्यक आर्थिक, सामाजिक आंकड़े एकत्रित करती हैं, जो अन्य समाज विज्ञानियों की भांति जनसंख्या भूगोलवेत्ता के लिए भी उपयोगी होते हैं। डी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। संयुक्त राष्ट्र संघ सहित कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन संपूर्ण विश्व तथा विभिन्न देशों के जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को समय समय पर पत्र पत्रिकाओं के रूप में प्रकाशित करते हैं। ये संगठन विभिन्न देशों से जनसांख्यिकी आंकड़ों को एकत्रित करते हैं और उन्हें सूचीबद्ध करके प्रकाशित करते हैं। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के लगभग सभी देशों से संबंधित द्वितीयक आंकड़ों का प्रमुख स्रोत है। विश्व के विभिन्न देश स्वयं द्वारा एकत्रित आंकड़ों को संयुक्त राष्ट्र संघ को उसके मानक के अनुसार व्यवस्थित करके प्रेषित करते हैं। विभिन्न देशों से संकलित आंकड़ों को विश्व स्तर पर तुलनात्मक बनाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ उनमें आवश्यक परिमार्जन भी करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख प्रकाशन निम्नलिखित हैं। ए जनांकीय वार्षिक पत्रिका, डेमोग्राफिक ईयरबुक। इस पत्रिका का प्रकाशन सन 1948 ईस्वी से निरंतर प्रतिवर्ष हो रहा है। इसमें संपूर्ण विश्व और पृथक पृथक देशों के जनसंख्या आंकड़े प्रकाशित होते हैं। यह पत्रिका जनसंख्या भूगोल के विद्यार्थियों तथा लेखकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसमें जनसंख्या आकार, क्षेत्रफल, जनसंख्या घनत्व, वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर, विवाह संख्या एवं दर आदि का प्रकाशन होता है। बी सांख्यिकी वार्षिक पत्रिका स्टैटिकल ईयरबुक। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित इस वार्षिक पत्रिका में विश्व के विभिन्न देशों में राष्ट्रीय आय, ऊर्जा उपभोग, खाद्यान्न उत्पादन, शैक्षणिक सुविधा, श्रम शक्ति, चिकित्सा सुविधा आदि से संबंधित आंकड़े प्रकाशित होते हैं। सी अन्य प्रकाशन अदर पब्लिकेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या संबंधी अन्य प्रकाशनों में प्रमुख हैं जनसंख्या और जन्म मरण सांख्यिकी पॉपुलेशन एंड वाइटल स्टैटिक्स, सेकेंड महामारी तथा जन्म मरण अभिलेख, एपिडेमोलॉजिकल एंड वाइटल रिकॉर्ड्स, थर्ड सांख्यिकी की मासिक पत्रिका मंथली बुलेटिन ऑफ स्टैटिक्स, फोर्थ जनसंख्या सांख्यिकी सार संग्रह कंपेंडियम ऑफ पॉपुलेशन स्टैटिक्स आदि। इन प्रकाशनों में विश्व के विभिन्न देशों के जन स्वास्थ्य, जन्म दर, मृत्यु दर आदि विविध जननांकी आंकड़े प्रकाशित होते हैं जो जनसंख्या भूगोलवेत्ता के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। फिफ्थ पांचवा नंबर जनसंख्या आंकड़ों के प्रयोग संबंधी समस्याएं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू यूटिलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन डाटा। विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किए गए जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के प्रयोग में भूगोलवेत्ता के सामने कई प्रकार की व्यवहारिक समस्याएं आती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन। क्षेत्रीय इकाई की सीमाओं में परिवर्तन होते रहने से आंकड़ों की तुलना करना कठिन हो जाता है। इस प्रकार के सीमा परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर पाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत में जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण आदि के संबंध में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्ववर्ती वर्षों के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों के संयुक्त आंकड़े मिलते हैं जिन्हें अलग अलग करना सुगम नहीं होता है। इसी प्रकार देश के भीतर राज्य, जनपद, तहसील आदि प्रशासनिक इकाइयों की सीमा और आकार में परिवर्तन होते रहने से भी आंकड़ों की तुलना तथा उनके विश्लेषण में असुविधा होती है। इस प्रकार प्रशासनिक इकाइयों के विभाजन तथा पुनर्गठन किए जाने पर तत्संबंधी आंकड़ों में उचित संशोधन एवं परिमार्जन की आवश्यकता होती है। दूसरा परिभाषा में भिन्नता। किसी जननांकी तत्व की परिभाषा जब विश्व के सभी देशों में एक समान नहीं होती है अथवा जब देश के भीतर भी विभिन्न जनगणना वर्षों में परिभाषा में परिवर्तन कर दिया जाता है तब आंकड़ों के प्रयोग तथा विश्लेषण में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए विश्व के विभिन्न देशों में नगर की परिभाषा टाउन की परिभाषा में अधिक भिन्नता पाई जाती है जिसके कारण विभिन्न देशों में नगरीकरण का तुलनात्मक अध्ययन करना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार श्रमिक वर्कर्स तथा व्यवसाय ऑक्यूपेशन की परिभाषाओं में भी पर्याप्त अंतर पाया जाता है जिसके कारण जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना के तुलनात्मक विश्लेषण में भी कठिनाई आती है। भारतीय जनगणना में नगर टाउन श्रमिक वर्कर साक्षरता लिटरेसी आदि की परिभाषा तथा मापदंड को सभी जनगणना वर्षों में एक समान नहीं रखा गया है बल्कि उनमें समय समय पर उल्लेखनीय संशोधन किए गए हैं। इन परिभाषिक परिवर्तनों के कारण विभिन्न जनगणनाओं के आंकड़ों की तुलना में समस्या आती है। थर्ड, विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता का अभाव। विश्व के सभी देशों के आंकड़ों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता एक समान नहीं पाई जाती है, क्योंकि आंकड़ों के संग्रह की तकनीकें तथा प्रयुक्त साधन सर्वत्र समान नहीं होते हैं। विकसित देशों के आंकड़े प्रायः अधिक पूर्ण और विश्वसनीय होते हैं, किंतु विकासशील देशों के आंकड़े कम विश्वसनीय और मध्यम कोटि के माने जाते हैं। गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता में कमी के कुछ कारण प्रमुख हैं। ए, आयु संबंधी सूचनाएं पूर्णतः सत्य नहीं होती है। जनगणना के समय वयस्क बालिकाओं तथा महिलाओं की आयु प्रायः कम और वृद्ध व्यक्तियों की आयु वास्तविकता से अधिक बताई जाती है। बी, सभी देशों में जन्म, मृत्यु, विवाह, तलाक, गर्भपात, शिशु मृत्यु, भ्रूण मृत्यु आदि से संबंधित पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। कुछ सूचनाओं को छिपा लिया जाता है, जिसके कारण ऐसे आंकड़ों की विश्वसनीयता संदेहास्पद हो सकती है। सी, अधिसंख्यक विकासशील देशों में शिक्षा की कमी तथा संसाधनों के अभाव के कारण जनसंख्या आंकड़े एकत्रित करने का कार्य प्रायः अल्पशिक्षित तथा अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जिससे त्रुटि की काफी संभावना हो रहती है। डी, व्यापक अशिक्षा, अज्ञानता, रूढ़िवादिता, उदासीनता आदि के कारण परिवार का मुखिया या अन्य सदस्य अपने से संबंधित सही सही जननांकी सूचनाएं प्राप्त नहीं करते हैं। चौथा, अपूर्ण जनगणना। विश्व के कुछ देश ऐसे भी हैं जहां नियमित जनगणना नहीं कराई जाती है। इतना ही नहीं, कभी कभी विभिन्न सामाजिक राजनीतिक कारणों से एक ही देश के सभी भागों में एक साथ जनगणना कराना संभव नहीं हो पाता है। उदाहरणार्थ, भारत में जनगणना 1981 में, असम में जनगणना और 1991 में जम्मू कश्मीर में जनगणना नहीं हो पाई थी। अतः जनसंख्या आंकड़ों में देशों के सभी क्षेत्रों का समाहित न होना भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। पांचवा, मानचित्रों का अभाव। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर मानव बसाव के वास्तविक स्थलों बिंदुओं को दिखाने वाले मानचित्रों की कमी है। ऐसे मानचित्रों के अभाव में जनसंख्या वितरण के वास्तविक प्रतिरूपों को दर्शाने और उनके विश्लेषण में कठिनाई होती है।